परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है संगति। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मसा किया है खुशखबरी दूं गरीबों को, कैदियों को रिहा करूं, खुशखबरी दूं गरीबों को, कैदियों को रिहा करूं, खुशखबरी दूं गरीबों को, कैदियों को रिहा करूं। उसने मुझको मसा किया है, उसने मुझको मसा किया है, उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है, उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है। गमगीनों को तसल्ली दूं, आजादी ऐलान करूं, गमगीनों को तसल्ली दूं, आजादी ऐलान करूं, गमगीनों को तसल्ली दूं, आजादी तसल्ली दूं, आजादी ऐलान करूं। उसने मुझको मसा किया है, उसने मुझको मसा किया है, उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों और परिवार के साथ बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पहला यूहन्ना की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज हमारे लिए इस पत्री से अध्ययन का अंतिम दिन होगा, क्योंकि आज हम इसे समाप्त करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। पिता परमेश्वर, आपने हमें पहला योहन्ना की पत्री का अध्ययन करने के लिए सहायता किया है और अब तक हमें संभाला है, हमें आशीषित किया है। इस समय जब हम अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज के वचन के द्वारा भी आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों से बोले और बातचीत करें, हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, बोलने और बातचीत करने पाए, हमारे हर एक प्रकार के कमी घटियों को हमारे जीवन से दूर करें, अपनी शांति आनंद हमें दें, ताकि इन वचनों के द्वारा हम आपको महिमा दे सकें। आप हमें आशीषित करें, अपनी महिमा लें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हमने देखा कि प्रभु यीशु पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। हम मनुष्यों की बात तो मान लेते हैं, परंतु परमेश्वर जो कहता है वह इससे कहीं अधिक बढ़कर है। परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु के जीवित वचन में होकर हमसे बातचीत करता है। यदि कोई परमेश्वर की बात अर्थात वचन को नहीं मानता है, तो वह परमेश्वर का झूठा होना ठहराता है। कहने का अर्थ यह है कि वह परमेश्वर को झूठा ठहराता है। वह स्वीकार नहीं करता कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है जो उसके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा है। बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में, आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जी हां, उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा है। तो आइए हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए पहला योहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसके 14 पद को पढ़ें। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जी हां, हमारा विश्वास हमारी प्रार्थना में भी विश्वास उत्पन्न करेगा। हमारा यह विश्वास हमें प्रार्थना करने का हियाव देगा। लिखा है यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। यदि हम उसकी संगति में रहते हैं तो हमारी प्रार्थना किसी भी परिस्थिति में उसकी इच्छा की पूर्ति के निमित्त होगी। जॉर्ज मुलर ने कहा, प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर के संकोच को दूर किया जाए, यह उसकी इच्छा को थामना है। अर्थात प्रार्थना में हम परमेश्वर को बाध्य नहीं करते कि वह जिस काम का संकोच कर रहा हो उसे करे, परंतु यह कि हम उसके अनुसार उसके विचार मन में लाएं। यही हमारा हियाब उत्पन्न करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब लिखा है वह हमारी सुनता है। आप निश्चित जाने कि वह हमारी प्रार्थनाएं सुनकर उत्तर देता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, परंतु उसका उत्तर हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होता है। यूहन्ना कहता है कि हमें विश्वास रखना है कि वह हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देगा, परंतु उसकी इच्छा के अनुसार, न कि हमारी इच्छा के अनुसार। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। मेरे प्रियो, यह जानना वास्तव में एक महान बात है कि हमारे पास एक स्वर्गीय पिता है, हम उसकी संगति में रहते हैं। यदि हम अपने जीवन में पाप को स्थान नहीं देते और हमारे जीवन में प्रार्थना में अवरोध नहीं है, तो हम स्वार्थ से पूर्ण प्रार्थनाएं नहीं करेंगे। जब हम उसकी संगति में रहते हैं, जब हम उसके पीछे चलते हैं, तब हमें पूरा विश्वास होता है कि वह हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमारी प्रार्थना का उत्तर भी देगा। हमें उसके समक्ष अविश्वास की प्रार्थना नहीं करना है और न ही याचना की मुद्रा में प्रार्थना करना है, परंतु हमें ढाढ़स बांधकर, हियाव रखकर परमेश्वर की इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करना है। पहला योना की पत्री 5 अध्याय उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। मृत्यु, जी हां, मृत्यु से यहां शारीरिक मृत्यु का अर्थ है, यहां आत्मिक मृत्यु की बात आती है। तो हम आत्मिक मृत्यु को समझें, अर्थात आत्मिक मृत्यु की बात आती ही नहीं है, यहां पर शारीरिक मृत्यु की बातें कही जा रही है, क्योंकि परमेश्वर की संतान को अनंत जीवन प्राप्त है। यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर की संतान यदि पाप करे तो परमेश्वर उसे घर बुला लेगा, अर्थात उसे इस संसार से उठा लेगा, शायद इसलिए कि पाप करके वह उसका यहां अपमान करते हैं। धर्मशास्त्र में उदाहरण है कि उसके लोगों ने मृत्यु लाने वाले पाप किए हैं, मूसा और हारून ने मृत्यु लाने वाले पाप किए थे। मूसा ने क्रोध में आकर चट्टान पर लाठी मारी थी, जबकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि वह चट्टान से कहे, अर्थात बात करे कि वह इसराइलियों के लिए पानी दे। उसने 2 बार चट्टान पर लाठी मारी, जबकि उसे तो उसका स्पर्श भी नहीं करना था। वह चट्टान प्रभु यीशु का द्योतक ही था। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय के 4 पद में पौलुस कहता है कि सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। मसीह केवल एक ही बार मरा था, मूसा ने 2 बार वार करके उसका प्रतीकात्मक अर्थ बदल दिया था। गिनती की पुस्तक 20 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। यद्यपि मूसा ने परमेश्वर से क्षमा याचना की और प्रतिज्ञा के देश में जाने की विनती की, परंतु परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 3 अध्याय के 26 पद में, बस कर इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें ना करना, मूसा और हारून के पाप मृत्यु लाने वाले पाप थे। मेरे मित्रों, नए नियम में भी इसका उदाहरण है, हनन्याह और सफीरा का। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसके 1 से 11 पद में हम इसे पढ़ते हैं, उन्होंने परमेश्वर के आत्मा से झूठ कहा और परिणाम स्वरूप जीवन से वे हाथ धो बैठे। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को अपने पहले पत्र में लिखा कि शराब पीकर प्रभु भोज का अपमान करने के कारण उनमें से अनेक जन दुर्बल हैं, रोगी हैं और कुछ तो मर भी गए हैं। 11 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है। पौलुस के कहने का अर्थ है कि उन्होंने मृत्यु लाने वाला पाप किया था। अब कोई पूछे, मृत्यु लाने वाला पाप क्या है? पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि यूहन्ना अक्षम्य पाप के विषय नहीं कह रहा है। हम शारीरिक मृत्यु लाने वाले पाप की चर्चा कर रहे हैं, अनंत मृत्यु लाने वाले पाप की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। वे परमेश्वर की संतान थे। यदि वे परमेश्वर की संतान नहीं होते तो परमेश्वर उन्हें घर नहीं बुलाता। परमेश्वर शैतान की संतान को ताड़ना नहीं देता, वह अपनी ही संतान की ताड़ना करता है। जब उसकी संतान पाप करती है तो वह उन्हें इस संसार से उठा लेता है। वह पाप क्या है? मूसा और हारून के लिए एक बात थी, उन्होंने क्रोध करके प्रभु यीशु का प्रकार नष्ट किया। हनन्याह और सफीरा का पाप था कि उन्होंने झूठ कहकर आत्मा को धोखा दिया। कुरुंद के विश्वासियों का पाप था कि वे शराब के नशे में अव्यवस्था करते थे। अतः मृत्यु लाने वाला पाप एक निश्चित अनाचार नहीं है। आपके लिए यह पाप मुझसे अलग हो सकता है, परंतु मेरा विचार यह है कि प्रत्येक विश्वासी मृत्यु लाने वाला पाप कर सकता है, वह चाहे जो भी हो। आप पाप करते रहते हैं जब तक कि परमेश्वर आपको इस संसार से न उठा ले। इसका अर्थ यह नहीं कि विश्वासी मरता है तो उसने पाप किया है। अबशलोम ने भी मृत्यु लाने वाला पाप किया था। मेरे विचार में वह दाऊद का पुत्र होने के कारण परमेश्वर की संतान था। उसने दाऊद के विरुद्ध विद्रोह करके मृत्यु लाने वाला पाप किया था। मैंने वर्षों की सेवा में देखा है कि परमेश्वर कैसे कलीसिया में उत्पात मचाने वालों को या तो संसार से उठा लेता है या ऐसा निष्क्रिय कर देता है कि वे किसी काम के नहीं रह जाते। मैं फिर कहता हूं कि यह शारीरिक मृत्यु है, आत्मिक नहीं। एक महिला एक छोटे से बच्चे को लेकर आई जिसके पास एक छोटा बच्चा था। वह बहुत ही अनुशासित था। पड़ोस में एक और बच्चा उसी आयु का था, वह बिगड़ा हुआ था। वे साथ साथ खेलते थे। एक दिन जब वे खेल रहे थे तब उस महिला ने बिगड़े बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वह भागकर बाहर आई तो उसने देखा कि उसका पुत्र उस बिगड़े बच्चे पर चढ़कर बैठा हुआ है और उसे घूंसे बरसा रहा है। उसने कहा, बेटे, यदि तुम उस बच्चे के साथ मेल भाव में नहीं खेल सकते तो घर में आ जाओ। उसने कहा, माँ, मैं अच्छे से खेलूंगा। आधे घंटे बाद उस बच्चे के रोने की आवाज फिर से आई। उसने जाकर बेटे से कहा, सीधे घर में चलो। बेटे ने कहा, माँ, मैं नहीं आना चाहता। अतः वह उसे पकड़कर घसीटती हुई घर में ले आई। वह चीख पुकार मचा रहा था। अब वह एक अच्छा बच्चा नहीं था, परंतु वह उसका पुत्र था। इस तथ्य को बदला नहीं जा सकता था। अब वह बाहर खेल नहीं सकता था। इसी प्रकार यदि परमेश्वर की संतान इस संसार में परमेश्वर के नाम का अपयश कमाती है तो परमेश्वर या तो उसे अलग कर देता है या उसे घर में ले आता है। पहला योना की पत्री 5 अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। आज जितने भी विश्वासी हैं सबने पाप किया है, परंतु मृत्यु लाने वाला पाप नहीं किया है। हमने गलत काम किया है, अधर्म का काम किया है, परंतु परमेश्वर हमें घर नहीं ले गया। यदि वह हर एक विश्वासी को पाप करने पर घर ले जाता तो मैं बहुत पहले जा चुका होता। पहला योना 5:18 में आगे लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न है वह पाप नहीं करता। मेरे मित्रों, हम देख चुके हैं कि हम में दो स्वभाव हैं, पुराना स्वभाव और नया स्वभाव। नया स्वभाव पाप नहीं करता, वह परमेश्वर और परमेश्वर की बातों की लालसा करता है। पुराना स्वभाव पाप करता है, जिसके कारण विश्वासी पाप में गिरता है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। इस पद से मैं मानता हूं कि परमेश्वर की संतान में दुष्ट आत्मा नहीं आ सकता। यदि विश्वासी में दुष्ट आत्मा आ जाए तो मैं उसके उद्धार पर प्रश्न करता हूं। क्यों? पहला योहन्ना के पत्र 4 अध्याय उसके 4 पद में वह कहता है, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा के साथ वास नहीं करता है, और यही कारण है कि एक विश्वासी के जीवन में दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर सकता। पहला योहन्ना के पत्र 5 अध्याय उसके 19 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, अर्थात सो रहा है। दूसरे शब्दों में, शैतान ने संसार को नींद में डाल रखा है। शैतान हम प्रचारकों से कहता है, चुप, तुम मनुष्यों को जगा रहे हो, हम उठें, जगाना नहीं चाहते, वे आराम से हैं। कलीसिया में अनेक जन अपने अपराधों और पापों में मरे हुए हैं, सो रहे हैं। हम उन्हें जगाना नहीं चाहते हैं, उन्हें अकेला छोड़ दो। मनुष्य जागता है तो शैतान को परेशानी होने लगती है। हमारा संसार उस दुष्ट की गोद में सो रहा है। अपने चारों ओर आप अपनी नजर उठा करके देखिए, आप इस तथ्य से सहमत होंगे। पहला योहन्ना 5 अध्याय के 20 पद में लिखा है, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। मेरे मित्रों, मसीही विश्वास धर्म नहीं, एक मनुष्य है प्रभु यीशु। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो आपका उद्धार हो जाएगा, यह धर्म नहीं है। यूहन्ना अपने इस पत्री के अंत में कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसके 21 पद में, जो इस पत्री का अंतिम पद है, लिखा है, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु और विश्वासी के मध्य आने वाली हर एक वस्तु मूर्ति है। यूहन्ना कहता है कि आपको उन सांसारिक बातों से दूर रहना है जो आपके मन मस्तिष्क पर छा जाए। लालच करना मूर्ति पूजा है, अन्य बातें भी मूर्ति पूजा है। आज विश्वासी इस दुष्ट संसार में बहुत से बातों की पूजा करते हैं, ये सब बातें मूर्ति पूजा ही तो हैं। हमारे लिए परमेश्वर का पहला कथन है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 पद में, और उसके अंतिम वचन में वह कहता है, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। मेरे मित्रों, यूहन्ना ने इस पत्री को 2 उद्देश्यों के निमित्त लिखा है। पहला, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु में विश्वास करना, और दूसरा, यह जानना कि अनंत जीवन हमारा है। क्या आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं? क्या आप परमेश्वर की गवाही में विश्वास करते हैं? यदि आपके पास पुत्र है, प्रभु यीशु है, तो अनंत जीवन आपका है। क्या आपको इस सत्य पर विश्वास है? यदि हम में यह विश्वास है तो हमें प्रार्थना करने का हियाव होता है। यह निश्चित है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर देता है, अतः हम उससे जो भी मांगते हैं हम पाते हैं। और अब हमसे यूहन्ना कहता है, हे बालको, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। मेरे मित्रों, हम इस संसार में दुष्ट के अधीन हैं, परंतु हम परमेश्वर में होकर जयवंत जीवन जी सकते हैं। और यही बात हमें यूहन्ना इस पत्री के द्वारा बताता है कि हम उद्धार पाकर अनंत जीवन पा सकते हैं। क्या आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है? विचार करें, यदि आज तक आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, तो आपके लिए अवसर है कि आप उसे अपने जीवन में बुलाएं और उससे कहें कि प्रभु, मैं इतने दिनों तक आपके बारे में नहीं जानता था, वचन पर मैं विश्वास नहीं करता था, सत्यता को नहीं समझ पाया था, परंतु आज मैंने आपके वचन को सुना है, मैं इस बात को जान गया हूं कि आप ही हैं जो मुझे अनंत जीवन दे सकते हैं, आप ही हैं जो मुझे मेरे पापों से छुटकारा दे सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं, मोक्ष दे सकते हैं। जब आप इस प्रकार से अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो निश्चय ही जानिए कि प्रभु यीशु आपके पापों को क्षमा कर आपको नया जीवन देता है, उद्धार देता है, आनंद देता है, शांति देता है, ताकि आप अपने जीवन में आशीषों को पाकर आगे बढ़ते चले जाएं। मेरे मित्रों, आज यहां पर पहला यूहन्ना की पत्री का अध्ययन समाप्त होता है। मैं यह आशा करता हूं कि इस पत्री के अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में बहुमूल्य बातों को सीखा है, आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। यहां पर आज इस पत्री का समापन होता है। अगले अध्ययन में हम एक नई पुस्तक से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप अपने मित्रों को अवश्य इस अध्ययन के बारे बताएं, ताकि हम फिर से एक नई पुस्तक के द्वारा अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
रोने वालों के सिर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, उनका दुख दूर करके खुशियों का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर आनंद का ओढ़ना उड़ाऊं।
राख के बदले सहरा हो, मातम ना हो, खुशियां हो, राख के बदले सेहरा हो, मातम ना हो खुशियां हो, राख के बदले सेहरा हो।